Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Upanishad Sherni hai. Aham Brahmasmi ye sakshatkar, o dood hai Sherni ka. और ये कहा जाता है कि शेरनी का दूध साधारण धातु के पात्रों में टिकता नहीं है, पीतल के या लोहे के, स्टील के, तांबे के, चांदी के भी पात्र में, बाल्टी में शेरनी को यदि कोई दोहे दूध निकाले उसका, तो दूध उस पात्र में आते ही पात्र को छेद करके निकल जाता है। ऐसे उस दूध में कुछ तत्व हैं जो बाकी धातुओं को छेद करके निकल जाता है दूध, उन तत्वों के कारण। केवल जो सोने का पात्र है, असली सोने का पात्र, उसी में शेरनी का दूध टिकता है। सोने को छेद करने का सामर्थ्य शेरनी के दूध में नहीं है, बाकी किसी भी धातु का पात्र बने उसे वो छेद कर देता है। तो लौकिक शेरनी का जो दूध है उसमें भी इतना सामर्थ्य है कि वो साधारण धातु के पात्र में नहीं टिकता, आ भी जाता उन पात्रों में तो उससे निकल जाता है। तो उपनिषद रूपी शेरनी का, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो दूध है, सार है, ये भी बड़े सुसंस्कारित अंतकरण रूपी पात्र में टिक पाता है और साधारण अंतकरण में, असंस्कारित अंतकरण में वह आने पर भी टिकता नहीं है। सत्संग के माध्यम से ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करने वाले वाक्य हम श्रवण करके एक बार परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को लक्षित कर भी लें, एक बार समझ में आ भी जाए, लेकिन वो परमात्मा का स्वरूप हमारे अंतकरण में सुस्थिर नहीं होता। अंतकरण में परमात्मा के स्वरूप का सुस्थिर न होना ही अंतकरण रूपी पात्र से उसे छिन्न करके, छेद करके निकल जाना है, उपनिषद रूपी शेरनी के अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक दूध का। वो धारित होगा संस्कारित तो शुद्ध सूक्ष्म अंतकरण में। एक बार ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाए तो फिर वह फिर समाप्त नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। आत्मा के रूप में ब्रह्म को धारित करके रखने का सामर्थ्य शुद्ध संस्कारित अंतकरण में है और अंतकरण को संस्कारित शुद्ध सूक्ष्म बनाने का साधन है तपादि। ब्रह्म विद्या जिस अंतकरण में स्थिर होती है उस अंतकरण को ब्रह्म विद्या के धारण योग्य बनाने के जो साधन हैं, उन साधनों को बताना अभी अवशिष्ट है, बाकी है। उसे बता रहे हैं आठवें मंत्र से। ये जो चौथे खंड का आठवां मंत्र है वो इसी के लिए है कि अंतकरण ब्रह्म को ठीक से पकड़ सके। आपकी अहम इत्याकारक वृत्ति का विषय जिसे श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया वह ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप को ही आलंबन आपकी अहम वृत्ति बना ले और उसी में स्थिर हो जाए। इसके लिए आवश्यक है यह अंतकरण वृत्ति जिस अंतकरण में बननी है वह अंतकरण शुद्ध हो जाए, अंतकरण शुद्धि के साधन है, उसे आठवें मंत्र में बताया जा रहा है कि तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। तो तस्या यानी जो उपनिषद आचार्य ने अभी बताई, उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या, और उस ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा कौन है, तो एक प्रकार से कल्पना की जा रही है पुरुष के रूप में ब्रह्म विद्या की। तो पुरुष अच्छी तरह से, जैसे पहले तैतृय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में आत्मा का, आत्मा के उपाधिभूत पंचकोशों का वर्णन करने के लिए पक्षी की कल्पना की, उसके शीर, पंख, पूंछ और मध्य भाग आदि अवयवों की कल्पना करके पक्षी के रूप में वर्णन पंचकोशों का हुआ है तैतृय उपनिषद में। तो यहां पर भी ब्रह्म विद्या सुप्रतिष्ठित जिन साधनों से होती है, अंतकरण ब्रह्म विद्या को धारण करता है जिन साधनों से, उन साधनों को ब्रह्म विद्या के अंगों के रूप से बताया जा रहा है। ब्रह्म विद्या की एक रूपक के माध्यम से चर्चा हो रही है, ब्रह्म विद्या का वर्णन हो रहा है। तो मनुष्य है समझ लो, तो मनुष्य अच्छी तरह से खड़ा कब रह सकता है, तो उसके दोनों पैर अच्छे मजबूत हो, और जो पंगु है जिसके पैर नहीं है वह अच्छी तरह से खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ब्रह्म विद्या भी अच्छी तरह से खड़ी रह सकती है जब उसके पैर हो। ये कल्पना कर लो कि ब्रह्म विद्या मोक्ष की साधन भूता एक मनुष्य के तरह मनुष्य है, और एक मनुष्य को अच्छी तरह से किसी भी स्थान पर खड़े रहने के लिए आवश्यक होता है उसके पैर मजबूत हो जाए, स्थिर पैर हो, मजबूत पैर हो। ऐसे यहां श्रुति कह रही है कि ब्रह्म विद्या रूपी पुरुष का पैर के तरह, प्रतिष्ठा कहते हैं पैर को, और पैर के तरह पैर है कौन, तो तप, दम और कर्म, ये ब्रह्म विद्या रूपी पुरुष के सुदृढ़ पैर के तरह पैर है। और ये जिस साधक के जीवन में तप है, जिस साधक के जीवन में दम है, जिस साधक के जीवन में शास्त्र ने बताए हुए कर्म अच्छी तरह से अनुष्ठित हुए हैं, तो माना जाता है कि उस साधक के मोक्ष की साधन भूता ब्रह्म विद्या के पैर सुस्थिर है, दृढ़ है। रूपक के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म विद्या के पैर के तरह पैर है तप, दम और कर्म। तो जिस साधक ने ब्रह्म विद्या के इन पैरों को अच्छी तरह से दृढ़ कर लिया है, मजबूत कर लिया है, उस साधक के जीवन में ब्रह्म विद्या सुस्थिर रहती है। तप कहते हैं जो गीता के 17वें अध्याय में शारीर तप और वाचिक तप और मानस तप बताया है, और उसके भी तीन तीन प्रकार बताए हैं, सात्विक, राजस, तामस। तो सात्विक तप है जिसे भगवान यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम करके कह रहे हैं। यज्ञ, दान और तप को कहते हैं कि छोड़ो मत, न त्याज्यम कार्यमेव तत्। वो तप है सात्विक तप, और शरीर इंद्रियों का एक प्रकार से समाधान, इसे तप कहा गया है। समाधान है, आप ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना चाहते हैं और उसके लिए बैठना पड़ता है घंटों तक उपनिषदों का विचार करने के लिए, उपनिषद अर्थ का मनन करने के लिए, उपनिषद अर्थ का चिंतन करने के लिए, और ठीक से उपनिषद अर्थ का मनन निधिध्यासन करने के लिए जब बैठेंगे तो शरीर आपका यदि साथ नहीं दे रहा है, अच्छी तरह से आसन लगा करके बैठते हैं सीधा होकर के तो पैरों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, तो माना जाता है कि शारीरिक तप की कमी है। तो शारीरिक तप और वाचिक तप तथा मानसिक तप, और वो भी जो सात्विक तप बताया गया राजस तामस नहीं, वो जिस साधक ने पूर्व जन्म में या इस जन्म में अच्छी तरह से किया है तो वो क्या करता है, मानस तप मन को संस्कारित करता है और शुद्ध संस्कारित मन में नित्यानित्य वस्तु विवेक उत्पन्न होता है। ऐसे दम है बाह्य विषयों से इंद्रियों का निग्रह, बाह्य विषयों से इंद्रिय निवृत्त हो गई, और तप है का मतलब वे आत्माभिमुख है। नहीं तो गीता में कहा गया कि जो अदांत इंद्रियां हैं, प्रमाथी इंद्रियां हैं, इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनः। आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं, चाहते हैं कि सत्संग में परमात्मा का जो स्वरूप हमें समझ में आ गया, अपने मन को उस परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करना चाहते हैं और बैठे हैं एकांत में, लेकिन तब भी वहां यदि इंद्रियां अदांत हैं, दम नहीं है जीवन में, तो वो अदांत इंद्रिया प्रमाथी इंद्रिया क्या करेगी कि आपके मन को बलात् परमात्म ध्यान से खींच करके अपने रूपादि विषयों का चिंतन करने के लिए उनके तरफ ले जाएगी। हरन्ति प्रसभम मनः। और यदि मन आपका दांत नहीं है, निगृहित नहीं है, तो आपकी बुद्धि चाहती है, प्रज्ञा चाहती है स्वरूप का चिंतन करना, बुद्धिवृत्तियों का साक्षी बनाना चाहती है आपको, वो जो प्रज्ञा है आपकी अंतर्मुख आत्माभिमुख बुद्धि की अवस्था को प्रज्ञा कहा जाता है। लेकिन मन यदि आपका अशांत है, आपके अधीन नहीं है, वश नहीं है, तो मन क्या करता है, तो कहते हैं हरन्ति तदस्य प्रज्ञाम। ये जो अदांत मन है वह आपकी प्रज्ञा को, आपके स्वरूप का अनुसंधान करने में लगी हुई आपकी बुद्धि को बलात् बाहर खींच लेता है। कैसे, तो कहते हैं जैसे पहले पतवार से चलने वाली नौकाएं होती रही, तो जिस दिशा में नौका आप ले जाना चाहते हैं उससे उल्टी दिशा की वायु आ जाती है जोर से तूफान, तो आप जिस दिशा में नौका को ले जाना चाहते थे उससे विपरीत दिशा में नौका को बलात् ले जाती है वो वायु। ऐसा अदांत मन, अशांत मन आपकी प्रज्ञा को भी आत्मा के ओर से निखींच करके बाह्य अनात्म वस्तुओं के ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में सात्विक तप तथा दम की आवश्यकता है और कर्म योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। शास्त्र ने बताए हुए जो अपने अपने वर्णाश्रम उचित कर्म है उन कर्मों का अनुष्ठान जिन साधकों ने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में ठीक से किया है अंतकरण के शुद्धि के उद्देश्य से। योगिनः यानी कर्माधिकारी मुमुक्षुगण लौकिक कर्म फल की आसक्ति को छोड़ करके अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। वह जो कर्म है अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्तव्य शास्त्र ने बताए हुए अग्निहोत्रादि उनका निष्ठापूर्वक ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान यदि करते हैं तो कहा जाता है कि ये ईश्वर की एक महान पूजा हो रही है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का सच्ची निष्ठा से परमात्मा के प्राप्ति के उद्देश्य से यदि हम पालन कर रहे हैं तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि वह भगवान की एक महान पूजा हो रही है और उस पूजा से संतुष्ट होकर के भगवान इस प्रकार का कर्म करने वाले जो मनुष्य हैं उन्हें सिद्ध बना देते एक सिद्धि देते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव और वो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि है अंतकरण की शुद्धि। भगवान की पूजा समझ करके अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का अच्छी तरह से पालन करने वाले मनुष्य को भगवान ऐसी योग्यता देते हैं अंतकरण में कि उस योग्यता के कारण उसे स्पष्ट जैसे अंधकार और प्रकाश का स्पष्ट विवेक होता है ऐसा उसके बुद्धि में श्रेय और प्रेय का स्पष्ट विवेक हो जाता है कि यह श्रेय है यह प्रेय है यानी यह कल्याण का साधन है यह प्रिय लग रहा है लेकिन विनाश का साधन है ऐसा स्पष्ट विवेक होगा और स्पष्ट विवेक हो जाएगा तो जो नाश के ओर ले जाने वाले साधन है संसार के ओर ले जाने वाले साधन है उससे उसकी निवृत्ति होगी वैराग्य होगा और अनात्म वस्तुओं से वैराग्य और आत्म वस्तु जो नित्य है उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होगी। ये मुमुक्षा है परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा और ये नियम होता है कि फल की इच्छा आपके अंतकरण में हुई तो फिर वह इच्छा आपको साधन में प्रवृत्त करती है। पहले साधन की इच्छा फल की इच्छा से उत्पन्न हो जाती है और ये कर्म दम और तप आदि जो साधन है यही बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया कि साधक के जीवन में सच्ची ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। तम एतम ब्राह्मणा वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन तो ये जो परमात्मा है इस परमात्मा को जानने की इच्छा हो जाती है कब जब अंतकरण में साधन चतुष्टय आ जाता है। साधन चतुष्टय है नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शम दमादि षट संपत्ति मुमुक्षा इन साधनों से संपन्न अंतकरण हो जा इन साधनों से संपन्न अंतकरण होता है जब वो शुद्ध हो जाएगा। अंतकरण की शुद्धि होती है इन कर्मों से और तप से दम से अंतकरण शुद्ध हुआ, उसमें नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ, अनित्य वस्तु से वैराग्य हुआ, नित्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हुई, तो फिर विविदिशा होती है। विविदिशन्ति, परमात्मा को जानने की, मोक्ष का साधन, आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष का साधन शास्त्र बताता है कि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, परमात्मा का ही आत्मरूप से अनुभव मोक्ष का साधन है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, रीते ज्ञानान न मुक्ति इत्यादि श्रुतियों से जिस परमात्मा का आत्मरूप से बोध मोक्ष का साधन ज्ञात हो रहा है, उसे जानने की इच्छा होगी तीव्र। सच्ची ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है उस साधक के जीवन में जिसने पूर्व में या इस जन्म में ये तप, दम और कर्म का अच्छी तरह से अनुष्ठान किया है। और इति शब्द बता रहा है इनके तरह और भी जो साधन है ब्रह्म ज्ञान के, गीता के 13वें अध्याय में बताए गए अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्थवम इत्यादि से जो 20 साधन बताए हैं, ये साधन भी जिसके जीवन में आए हैं उसके जीवन में पूर्व में बताई गई जो ब्रह्म विद्या है, जिसे आचार्य ने कहा कि उक्ताते उपनिषद, तुम्हें उपनिषद हमने बता दी, वह उपनिषद किसके अंतकरण में टिकेगी? तो कहते हैं जिसके, जिस साधक के यहां ब्रह्म विद्या के पैर के तरह पैर रूप यह तप और दम कर्म अच्छी तरह से दृढ़ है, इनका अनुष्ठान जिसने ठीक से किया हुआ है। और कौन है इसके पैर? एक पैर तो है तप, दम और कर्म शब्द से बताया गया, और एक ही पैर हो तो ठीक से खड़ा नहीं रहा जा सकता, इसलिए दूसरा एक पैर बताया गया कि वेदाः सर्वांगाणि, वेद या तो इनको तप, दम और कर्म तथा इति शब्द से बताए गए अमानित्वादि जो साधन है, ये सुदृढ़ दो पैर के तरह पैर हैं। खाली पैर मात्र से ही तो मनुष्य शरीर नहीं बनता, पैर तो एक अंग है, बाकी और भी अंग होते हैं, हाथ, कान, पांव, शीर, आंख, तो वो सब बाकी अंग कौन है? तो कहा कि वेदाः सर्वांगाणि, ब्रह्म विद्या के कर्म से, के पैर से अतिरिक्त बाकी जो अंग हैं वे वेद हैं, यानी चारों वेद, ऋग, यजु, साम, अथर्व, और वेद शब्द से फिर उपलक्षण समझ करके बाकी 6 जो अंग हैं, चारों वेद और चारों वेदों के जो 6 अंग हैं, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प, शिक्षा, छंद, निरुक्त, ये सब होते हैं वेद के 6 अंग, और इन 6 अंगों सहित सांग वेद ब्रह्म विद्या रूपी पुरुष के सर्वांगानी यानी बाकी अवशिष्ट अंग हैं, हाथ, पैर, कान आदि, और सारे अंग से युक्त जो पुरुष है उसे सकलांग कहा जाता है। तो सभी अंगों सहित चारों वेद ब्रह्म विद्या के अवशिष्ट अंग हैं, और तप, दम, कर्म तथा अमानित्वादि जो वेद के कर्मकांड के द्वारा बताए गए साधन हैं, ये ब्रह्म विद्या के पैर के तरह पैर हैं। और पुरुष को कहीं खड़े रहने के लिए आवश्यकता होती है स्थान की, ऐसे आकाश में खड़ा नहीं हो सकता, तो ये ब्रह्म विद्या रूपी पुरुष कहां खड़ा होगा, उसका आयतन यानी आश्रय कौन है? तो कहते हैं कि सत्यम आयतनम, ब्रह्म विद्या रूपी पुरुष का आश्रय आयतन है सत्य, सत्य है, सत्य वचन सत्य भाषण। तो जिसके जीवन में सत्य आ गया तो उसके जीवन में अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म विद्या स्थिर हो जाती है। ब्रह्म विद्या का आयतन है सत्य। तो इस प्रकार ये ब्रह्म विद्या तो अकेली ही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति प्रमा मोक्ष को सिद्ध करने में समर्थ है, लेकिन ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो जाए और वो स्थिर रहे तब तो मोक्ष दिला पाएगी अकेली। सूर्योदय होने के बाद अंधकार दूर होगा और रात्रि में यदि प्रकाश करना है किसी कमरे में तो दीप जल जा तब तो दीप जलते ही अंधकार को दूर करेगा, जिस कमरे में दीप जलेगा उस कमरे के अंधकार को। लेकिन दीप को जलाने के लिए तो आवश्यकता है माचिस की और माचिस में से तिली निकाल करके उसको घर्षण करने की, ये सब उपाय दीप को प्रकट करने के हैं। लेकिन प्रकाशित हुआ जो दीप है वह अकेला ही फिर अंधकार को दूर कर लेगा। ऐसे यहां पर जो ये तप दम कर्म अमानित्व आदि साधन बताए हैं, सत्य वेद आदि, ये सब के सब अज्ञान को दूर करने वाले ब्रह्म विद्या को उत्पन्न करने में सहायक हैं। इसलिए ब्रह्म सूत्र में भगवान वेदव्यास जी तीसरे अध्याय में बताएंगे कि सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुते, सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते, यानी ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए तो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अशुद्ध्यादि दोषों को, मलादि दोषों को निवृत्त करने के लिए कर्म से लेकर के वेद आदि सभी साधनों की आवश्यकता है। और इन साधनों से प्रकट हुई अहम ब्रह्मास्मि यह ब्रह्म विद्या अकेली ही मोक्ष को प्रदान करती है। ब्रह्म विद्या का फल वो मोक्ष है, उसका साधन तो केवल ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अनेक दोष हैं, उन दोषों की निवृत्ति द्वारा ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति में सहायक है ये तपादि अनेक। ये यहां पर तस्ये तपोदम कर्म इति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगाणि सत्यम आयतनम इस मंत्र में बताया गया है। और भी एक मंत्र है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।